ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस सभा में आप सबका स्वागत है। श्री द्वारकाधीश भगवान की। तो द्वारका की लीला अनंत है, वो चार पांच दिन की यात्रा में समाप्त नहीं हो सकती है। अभी बहुत सारी कथाएं जो द्वारका में हुई है वो बताना बाकी है। तो मैं संक्षेप में सारी कथाएं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी कथा बचेंगी। श्री द्वारका, ये मैंने पहले ही कहा था कि भगवान का ऐश्वर्य धाम है, लेकिन द्वारका में रहते हुए भी भगवान कभी भी नंद महाराज, यशोदा मई, राधा रानी और गोपियाँ और ग्वाल बाल को भूल नहीं सके। उनकी उनका जो प्रेम था ब्रजवासियों के प्रति वो इतना गहरा था कि वो कभी भी उनको भूल नहीं पाए। तो वो जब रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, जाम्बवती देवी उनको अपने अपने महल में भोजन कराती थी, तभी अचानक उठ के खड़े होकर रोते थे। तो उनको लगता था कि हमारे भोजन में कुछ कमी है, कुछ सेवा में कमी है, इतना रोते क्यों हो। फिर रात में जब शयन कर रहे हैं अपनी अपनी रानी के साथ, अपने अपने अलग अलग महल में, सबके साथ भगवान अनंत रूप में विराजमान हैं, वहाँ पर भी उनको अचानक रात में उठते थे और राधे ललिते विशाखा ऐसे पुकार के रोते थे। तो भगवान के रानियों को कभी ईर्ष्या नहीं हुई कि ये गोपियाँ कौन हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ये गोपियों को उनका विचार जो है भगवान का नष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। उनके मन में विचार होता था कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते और वो गोपियाँ कर सकती है, जिसके लिए आप यहाँ पर आने के बाद भी, हमारी इतना सेवा लेने के बाद भी हम उनको याद करते हैं, आप उनको याद करते रहते हैं, तो क्या हम समझ सकते हैं वो क्या चीज़ है। ऐसे अनेकों बार प्रसंग हुआ, हर रोज ऑलमोस्ट ये होता था कि वो भगवान को रोते हुए देखते थे अपने महल में। तो एक दिन सब लोगों ने पूछा कि आप बताइए ऐसे क्या बात है जो हमारे अंदर नहीं है। दशम स्कंध में देखना, पूरा देखने की जरूरत नहीं, दशम स्कंध। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपको एक दिन बताऊंगा, एक दिन आपको समझाऊंगा कि इस पीछे क्या रहस्य है। तो कई दिन के बाद में एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मुझे सरदर्द हो रहा है। अभी द्वारकाधीश को सरदर्द हो रहा है कोई छोटी सी थोड़ी बात है। राज वैद्य को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, सब लोगों ने बहुत कोशिश किया, दवाई दी गई, बहुत सारा उपाय किया गया, लेकिन दर्द तो कोई मिटता नहीं है। नारद मुनि आए, उन्होंने बोला भगवान सब उपाय कर लिए, अभी क्या करना है आप ही बताइए, आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, आपका दर्द का इलाज किस में हो मानते हो। तो भगवान ने कहा आपने मुझे पूछा ही नहीं, आप अपना अलग इलाज करते जा रहे हो, मुझे पूछा ही नहीं, अब पूछा तो बताता हूँ। तो भगवान ने कहा जो अपने आप को मेरा भक्त मानता है और मेरी भक्ति करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति अगर अपने चरणों की धूल मुझे दे दे और मैं वो सर पे लगाऊंगा तो मेरा सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो तब तक तो सारी रानियां, सारे मंत्रीगण, सारे द्वारकावासीगण, हाँ सारे द्वारकावासीगण, वो सब लोग वहां पर खड़े थे ऐसे, क्या किया जाए, ऐसे आप बोलो और हम करेंगे। जैसे ही भगवान ने ये कहा सब लोग पीछे हट गए, एवरीबडी वेंट बिहाइंड। भगवान सबको देख रहे थे, तो नारद मुनि ने देखा, सब भगवान ने देखा, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप अपने चरणों की रथ देते हो। बोले वो तो द्वारका नाथ है, हमारे पति देव है, वो हम अगर उन अपने चरणों की धूल उनको देंगे तो हम नरक में जाएंगे, हमको उनकी चरणों की धूल देते हैं रोज हम लोग, वो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा परम भाग्य है, तो हमारे चरणों की धूल उनको देना ये तो हमारे लिए बहुत पाप है, और उस पाप के फल के रूप में हम नरक में निवास करेंगे चिरंतन काल के लिए, ठीक है। तो बात नहीं, फिर मंत्रियों की ओर देखा, मंत्री ने वही कहा ये तो हमारे नाथ हैं, स्वामी हमारे, सब लोग हट गए पीछे। फिर नारद मुनि फिर भगवान के पास आए, बोले भगवान अभी क्या करना है कुछ बताओ। तो बोले शहर में दौंडी लगा दो कि द्वारकाधीश को सरदर्द हो रहा है और जो कोई अपने आप को उनका भक्त समझता है वो अपने चरणों की रज अगर उनको देते हैं तो उनका सर दर्द मिट सकता है। सारे द्वारका के लोग हट गए, बोले कोई नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग सब लोग नरक में निवास करेंगे, हमको नहीं चाहिए, इतना बहुत पाप हम नहीं कर सकते। फिर द्वारका भगवान, फिर नारद मुनि भगवान के पास लौट के आए, फिर भगवान को पूछा क्या करें। तो अकेला भी द्वारका सब द्वारका में दौंडी कर दिया, कोई नहीं आया। बोले ठीक है आप ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ और वहाँ पर दौंडी लगा दो। तो नारद मुनि वृंदावन में गए और वहाँ दौंडी लगाया उन्होंने कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान जो पहले ब्रज में थे वो यहाँ रहते थे, उनको सरदर्द हो रहा है, जो भक्त अपने आप को उनको आप भक्त समझता है वो अगर चरणों की रज उनको दे दें तो फिर उनका सरदर्द मिट जाएगा। सब गोपियाँ द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुनकर वहाँ इकट्ठा हो गई थी दौंडी सुनने के लिए, क्या दौंडी लगाई जा रही है, इतने की समस्या हो गई है। जैसे ही दौंडी लगाई वो सब लोग जमुना किनारे गए, जमुना में पैर भिगाया, मट्टी में पैर भिगाया, मट्टी निकाली, फिर पैर भिगाया, फिर मट्टी लगाई, फिर मट्टी निकाली। मम्मी मैंने आपको जाते ना भाई, हम लोग गोमती में गए थे, इधर गए थे, पैर में लगती है ना मट्टी, जा कर पैर भिगा भिगा कर, पैर रख कर जितनी लग रही है उसको इकट्ठा करते करते हे ढेर सारी मट्टी लेके आए। तो नारद मुनि ने कहा अरे इतनी जरूरत नहीं, थोड़ी सी जरूरत है, एक की भी काफ़ी है। तो तो सारी लाखों गोपियां अपना पैर दबा दबा कर वहां पर इतना बड़ा ढेरा जमा हो गया। तो नारद मुनि ने कहा इतनी जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि आगे भी काम आएगा ना, आगे दोबारा होगी तो दोबारा थोड़ी आओगे आप, यहाँ पर रख लो अपने स्टॉक में, जब भी दर्द होगा लगा दो। नारद मुनि कहते हैं तुम जानते हो क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग मूर्ख औरते हो, सब लोग अनंत काल के लिए कठोर नरक यातना भोगने के लिए नरक में जाओगे। तो गोपियां क्या कहती हैं, गोपियां कहती हैं अगर पूरे सर दर्द ठीक होने की तो बात नहीं कर रहे हम, कुछ क्षण के लिए भी उनका दर्द कम हो जाए तो उस कम होने के लिए भी हम अनंत काल तक नरक की यातना सहने को तैयार हैं। दर्द ठीक होने की बात तो आगे की बात है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी थोड़ा भी अंतर पड़ता है हमारे इस काम से तो उस काम के लिए हम अनंत काल तक नरक वास में करते कर सकते हैं। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे क्या बात है, इस बात को मैं काट नहीं सकता, पहले तो बोला तो मूर्ख हो नरक में जाओगे महत पाप कर रहे हो, लेकिन उस बात को ऐसा काट दिया उन्होंने तो कुछ बोल नहीं पाए, सीधे वो बड़ा बोरा उठा के द्वारका में पहुंचे। भगवान ने कहा ये क्या लेके आए हो, बोले वो सब भक्तों के चरणों की रज है, गोपियों के चरणों की रज। तो फिर उन्होंने कहा कि गोपियों को डर नहीं लगा क्या नरक में जाने का, तो भरी सभा में अभी देखो सब लोग वैसे भी तो पीछे हट गए लेकिन चिंतित तो है ना कि हमारे द्वारकाधीश को सरदर्द हो रहा है, सब लोग बैठे हैं भगवान का, भगवान सर पे हाथ पकड़ के बैठे। तो नारद मुनि सबके सामने बताते हैं यही बात कि गोपियों ने कहा कि सरदर्द ठीक होने की बात तो दूर है, थोड़ा सा भी सरदर्द ठीक हो गया तो भी हम उस पाप के लिए चिरंतन काल तक नरक वासना नरक यातना भोगने को तैयार है। तो भगवान ने एकदम बहुत ही अर्थपूर्ण नजर से सारी गोपियों को देखा, जो कहते थे ना हमेशा कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो समझ गई कि उनके अंदर और गोपी के अंदर में क्या अंतर है। तो ये लीला द्वारका में हुई। हाँ भगवान ने प्रेम कैसा होता है ना उसका परिभाषा यहाँ पर किया है, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम में खुद के लिए कुछ अपेक्षा कोई करता नहीं है। एक बात है कि खुद के लिए कुछ ना मिले तो भी हम करते रहेंगे, और दूसरी बात है कि हमको वैसा करने से बहुत कष्ट होगा फिर भी हम करते रहेंगे। जैसे बालक को रात को बुखार आता है, उल्टियाँ होती है, कितना माँ को कष्ट होता है, रात भर जगना पड़ता है, धोना पड़ता है, 50 बार कपड़े धो, 50 बार पहनो, दवाई दो, फिर उल्टी करेगा, फिर खिलाओ, फिर डॉक्टर को दिखाओ, कितना कष्ट होता है एक बालक के लिए। कोई जो शादीशुदा नहीं वो बोलेगा क्यों तकलीफ करना है इतना, शादी करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो शादी कर चुकी है माँ, उसको बालक हो चुका है, उसको बताना नहीं पड़ता है कि आपको रात को जगना पड़ेगा, इतना सारा कष्ट है इसके अंदर, देख लो सोच लो प्रेग्नेंट होने के पहले सोच लो। ऐसा कोई डिस्कस नहीं करता कभी, क्योंकि प्रेम जो होता है ना वास्तविक प्रेम सच्चा प्रेम वो त्याग पर आधारित होता है। जब तक हम जिस पर प्रेम करते हैं उसके लिए त्याग करने को तैयार नहीं है तब तक हमारा प्रेम सच्चा नहीं हो सकता है। अक्सर हमारा प्रेम स्वार्थी होता है, खुद को क्या मिलेगा उसके अंदर, अच्छा ये पति अच्छा है, लंबा चौड़ा है, धनवान है, पढ़ा लिखा है, बहुत पावरफुल आदमी है, ठीक है मेरा भी इज्जत बढ़ेगा उससे, मैं भी गाड़ी में घूमूंगी उसके साथ में, या आप देखोगे कि हाँ बहुत बड़े अमीर आदमी की लड़की है, बहुत धन संपत्ति है, बहुत दहेज मिलेगा, और मुझे भी कह सकता हूँ कि मैं इसका इसका दामाद हूँ। तो हर रिश्ते दुनिया के जो होते हैं ना भौतिक दुनिया में वो स्वार्थ पर आधारित होते हैं, मुझे क्या मिलेगा सब कुछ उस पर निर्भर रहता है। लेकिन दिव्य दुनिया में, भगवान की दुनिया में, भगवान की भक्ति की दुनिया में सब कुछ प्रेम की व्याख्या जो है वो त्याग पर आधारित है। भीष्मदेव ने प्रेम की व्याख्या की है महाभारत में कि जिस पर हम प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होते हैं ना आदमी, उसकी सेवा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके सुख के लिए, तो उसको ही सच्चा प्रेम कह सकते हैं हम लोग। और ऐसा प्रेम इस दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे भी ऐसा प्रेम तब भी मृत्यु ऐसी घटना होती है एक जो उस प्रेमी व्यक्ति को आपसे छीन लेती है, तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाता है, ज़्यादा करके दुख होता है विरह का यहाँ पर। और कभी हम जिस पर प्रेम करते हैं वो हमको धोखा देता है, ये भी हो सकता है, या प्रेम अच्छा सच्चा करने वाला मिल गया तो काल उसको छीन लेता है। तो कितना भी त्याग करेंगे तो भी यहाँ पर स्वार्थ की भावना जाती नहीं है, कितना भी हम कहेंगे आपके लिए आपके लिए आपके लिए, लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज इन फॉर मी, ये रहता ही है। तो भगवान ने यहाँ पर गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु भी एक कठोर सन्यासी थे, इतने कठोर सन्यासी थे कि वो स्त्री की पहने हुई वस्तु को भी देखते नहीं थे। कोई जूता है या कोई ऐसे कोई वस्त्र है या कोई ऐसी वस्तु है जो स्त्री ने यूज़ किया है उसको भी देखते नहीं थे, इतने कठोर सन्यासी थे वो। ऐसे कठोर सन्यासी ने एक बार एक उनके तरुण शिष्य ने जो विरक्त था, एक बहुत ही बुढ़ी माता जी के घर के आके भिक्षा मांगा, उसने अच्छा भिक्षा दिया तो दोबारा उसके घर पे गया कि भाई ये बुढ़ी माता अच्छी भिक्षा देती है। तीसरी बार भी उसके घर पे गया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने संग से निकाल दिया कि तुम किसी स्त्री के द्वारा दिए गए भिक्षा से भी आसक्त हो गए हो, मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो, गेट आउट। तो गेट आउट बोला तो उसने आत्महत्या कर दिया। तो महाप्रभु चैतन्य ने इतना कृपा किया उसके ऊपर, वो जब मर गया तो उसकी जो आत्मा है वो आत्मा आकर भगवान को गीत सुनाती थी प्रेम से। तो भगवान गंगा किनारे बैठकर उसके गीत सुनते थे, फिर उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो इतने कठोर थे, वो कहते हैं गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, और नवद्वीप लीला में ललिता राधा विशाखा ऐसे नाम लेकर भाव विभोर होते थे, लोग उनका टीका भी करते थे, अरे कैसे सन्यासी है ये, लड़कियों के नाम लेके जपता है। तो दंडा लेके भागते थे उनके पीछे भाव में। तो वो चैतन्य महाप्रभु उन गोपियों को जो स्त्रियां हैं उनको अपने आप को उनके दासों का दास मानते थे वो, ऐसी है गोपियां हैं। महाप्रभु चैतन्य ने भी गोपियों का महात्म्य प्रकट किया है, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ गोपी जो है राधा रानी, उसका भाव श्री कृष्ण को समझ में नहीं आया, तो वो भाव केवल समझने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक पूरा अवतार खर्च किया है, वो है चैतन्य महाप्रभु का। तो ये लीला द्वारका में हुई है। दूसरी एक लीला है द्वारका में, द्वारका के अंदर से शुरू हुई थी वो है पौंड्रक लीला। कितने लोग जानते हैं पौंड्रक को? बहुत कम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। पौंड्रक एक ऐसा राजा था, वो एक दिन बहुत डिप्रेस हो गया किसी कारण। देखो दुनिया में तो डिप्रेशन के कई कारण हैं, पैसा छूट गया, कोई नज़दीक का व्यक्ति मर गया, या नौकरी नहीं मिल रही है, या शादी नहीं हो रही है, या शादी होके पत्नी या पति मर गया, या जन्म लोके बच्चा मर गया, कितने दुख के कारण हैं। हाँ, या मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा हो गया उसका दुख हो रहा है, कितने कितने अनंत कारण हम देखते हैं अभी हमारे जीवन में, देख रहे हैं कितने लोगों को देख रहे हैं सामने से, अनंत कारण से लोग दुखी रहते हैं, ये दुनिया तो दुखालयम है। तो ये बेचारा राजा पौंड्रक क्षत्रिय था, वीर था, लेकिन किसी कारण बहुत डिप्रेस हो गया। तो उसके सब दोस्तों ने उसको समझाया तो भी वो उत्साह नहीं आ रहा था उसको। तो एक दिन उसको बताया, अरे तुम तो श्रेष्ठ आदमी हो, कितने वीर हो, तुम परम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा विद्वान कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा प्रभावी कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कला में युद्ध में कोई नहीं है। ऐसा करते 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 वर्णन करते 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 बोले, तुम तो भगवान ही हो, इतना सब भगवान, जो भी ऐश्वर्य तुम्हारे अंदर है, तुम वास्तव में भगवान ही हो। तो ये बात से एकदम उत्साहित हो गया वो। तो ये उत्साह की वजह से उसको सोचने लगा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ही वो हूँ जो पृथ्वी पर अवतार लिया है, पृथ्वी का धारण करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए मेरा ही जन्म हो गया है। तो उसने ना दो हाथ में शंख चक्र धारण कर लिया, दो और दूसरे हाथ जोड़ दिया अपने आप को, और पद्म और गदा भी लगा दिया अपने हाथ में, और अपने दरबार में चार भुजा लेकर चार शस्त्र लेकर बैठा था वो। और बहुत देर ऐसा करने के बाद में पीताम्बर पहनने लगा, फिर कौस्तुभमणि लगा दिया, इधर वैजयंती माला एक नकली वाली पहन ली, और श्रीवत्स का चिन्ह बना छाती पर बना दिया, गोल्डन गोल्डन मालों का एक चिन्ह बना दिया श्रीवत्स का, ये भगवान के सब चिन्ह हैं। और समझो आप नाटक में राजा का काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिस में आप रोज वो वस्त्र पहन के डायलॉग बोलते हो ना, तो घर में भी कुछ समय तो लगता कि मैं राजा ही हूँ ऐसा लगता है। मेरा अनुभव है, जब मैंने एक बार रावण का रोल किया था बहुत साल पहले, तो मैं दिन भर रावण के डायलॉग ही बोलता था, त्रिलोक विजयी रावण, एकोहम द्विजो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रोज दिन भर दाढ़ी करते हुए ब्रश करते हुए वही मेरे मन में घूमता था, एकदम एक रूप हो गया था रावण से मैं पूरा। 3 महीने के लिए बोलो, वो नाटक था केवल। नाटक होने के बाद भी कई दिन तक मैं उसी भाव में था, एकदम समरस होकर मैंने वो रोल किया था। तो वैसे रोज ये पीताम्बर और रोग कविवत्समणि चार भुजा धारण करते 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 उसको एक दिन कंप्लीटली वो कन्विंस हो गया कि मैं ही भगवान हूं। उस झूठ मूठ के वस्त्र से संग करने के बाद भी उसको ऐसा एक पूरा वहम हो गया कि मैं ही भगवान हूं। तो फिर उसके मन में विचार आया कि वो जो द्वारका में है वो कौन है, वो नकली है। तो उन्हें मंत्री लोगों को बुलाया, तो जब मैं भगवान हूं दूसरा नकली भगवान कैसे रह सकता है, और एक भगवान होने के नाते मैं भगवान हूं तो मेरा कर्तव्य है कि सब नकलियों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रजा दिशा भ्रष्ट हो जाएगी, प्रजा की दिशा भूल हो जाएगी, प्रजा का कल्याण कैसे होगा, और वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये भगवान है कि ये भगवान है। तो मेरा ये भगवान के नाम से उत्तरदायित्व है कि मैं नकली सारे भगवानों को नष्ट कर दूं। मंत्री ने बोला हाँ भगवान सही है, भगवान भजन सही है, सही है, आपका बात सही है। तो उन्होंने अपने दूत से एक खत लिखवाया और द्वारका भेज दिया। वो क्या लिखा था उसके अंदर कि आप नकली भगवान हो और हमारे भगवान जो है पौंड्रक काशी नगरी के पास उनका राज्य है वो असली भगवान है, आप नकली हो, आपने धारण किए झूठ मूठ के अस्त्र जो है वो सरेंडर करो आप। अच्छा ये होगा कि आपके ये सारे जो भगवान के चिन्ह नकली आपने लगा के रखे हैं वो मेरे शरण में अदा करो उसको, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इसे खत भेजा भगवान को। वो बेचारा दूत अपना राजा का आदेश लेके द्वारका में आया, उसका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, फिर बोला पढ़ो क्या संदेश है हमारे लिए। तो उसने भी बड़े चाव से अपने राजा का संदेश बड़ी सभा में पढ़ दिया। ऐसा भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पेट पकड़ के इतना हंसे कि बोला वाह क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हम उसका जवाब देंगे, तो जवाब देखेगा कि हम जरूर हमारे चिन्ह जो है वो आपको शरण देने के लिए आ रहे हैं, जरूर आएंगे, शंख चक्र पद्म गदा हमारे वस्त्र जो हमने नकली पहन के रखे हैं वो आपको हम आके दे देंगे। और भगवान ने सेना का आह्वान किया, रथ में बैठ गए और सारे शस्त्र लेकर भगवान भी चले। तो फिर वो भी आए बाहर और वो भी ऐसे रथ में चार भुजा लगा के उसे, भगवान भी रथ में खड़े हो गए युद्ध भूमि में, जोर जोर से हंस रहे हैं भगवान उसको देख के, लोग क्या नज़ारा बना के रखा है, तक अच्छा मेकअप किया है सुंदर एकदम, देखो वैसे चार हाथ ऐसे लगा के रखे हैं, वो भी ऐसा हाथ में चक्र है गदा है, टू फनी। तो उसको और क्रोध आया कि ये नकली भगवान मुझे देखिए हंस रहा है, उसका वध करना मेरा कर्तव्य है। तो बड़ा वीर था, उसने धराधर धनुष बाण और चालू किया शस्त्र अस्त्र। भगवान ने भी उसको घनघोर युद्ध किया, दोनों सेना में घनघोर युद्ध हो गया। वो ऐसा नहीं कि वो एकदम ऐसा बेकार का युद्ध था, वो बहुत बड़ा वीर था, वो बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो भगवान ने कहा अब मेरे शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में अर्पण करने का समय आ गया है, लो मेरा चक्र धारण कर लो। चक्र के चक्र छोड़ दिया, चक्र गया, सर काट के वापस आ गए। तो उसके साथ में ना काशीराज थे, काशीराज काशी के राजा। तो काशीराज ने उनको सब चढ़ाया था, तुम भगवान हो भगवान हो। तो जब ये गए थे, भगवान का बहुत द्वेष करते थे सब लोग, तो जब ये गए भगवान बनकर युद्ध करने के लिए तो काशीराज भी उनके साथ में गए थे। और काशीराज ने ऐसा ऐलान किया था काशी में कि मैं अभी कृष्ण का सर लेकर लौटूंगा, आप देखते रहो, कृष्ण का कटा हुआ सर काशी के नगरी में पहुंच जाएगा। सब जोरदार बात करके गया था वो, सब रानियां बहुत खुश हो गई, तिलक विलक किया था उसका। तो जब सुदक्षिण का ये अपना पौंड्रक का वध हो गया तो फिर काशीराज युद्ध करने आए, भगवान ने काशी का भी सर काट दिया और वो बाण से काटा, बाण से, हाँ बाण ऐसा मारा ना कि वो सर काटा और बाण को ऐसा दिशा दिया, सीधा बाण सर को लेकर काशी में जाके गिर गया। काशी के समय धड़ाड़ करके बाण लेकर सर गिर गया। तो सब लोग भाग के आए, देखो देखो हमारे पतिदेव ने कहा था शत्रु का सर काट के भेजूंगा, आ गया सर, कृष्ण का सर आ गया। सब लोग भाग, रानियां भाग भाग के आए, देखो सब लोग जाओ। उन लोग पास आए, देखा तो क्या, ये तो हमारे पति का सर है, ये कैसे हो गया, अनर्थ हो गया करके साथी पिट कर रोने लगे। यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया, भगवान चले गए आराम से, हाँ नकली भगवान को समाप्त करके भगवान लौट गए, रुक्मिणी के महल में गए, बोले चौसर खेलेंगे, चलो चेस बैठे आराम से काउच में बैठ के चौसर खेल रहे हैं। इधर जब भगवान के वो काशी का राज का सर जब उतर गया, गिर गया, तो रानियाँ बहुत दुखी हो गई। तो उसका पुत्र था एक सुदक्षिण, सुदक्षिण बड़ा वीर था, शिव जी का भक्त था वो। अच्छा काशी जो है ना, वो बनारस जो वाराणसी है, शिव जी का साम्राज्य है उधर। जब ही सब लोगों ने निंदा किया था कि ये क्या फकीर आदमी है, तुम्हारा पति पार्वती को बहुत उसका निंदा किया था, तो पार्वती ने कहा था कि अरे कुछ करो, सब देवता लोग सब राक्षस लोग निंदा कर रहे हैं हमारी कि हम लोग इतने फकीर है, पेट के नीचे रहते। तो भगवान ने शंकर ने काशी बसाई थी, एकदम ऐश्वर्य संपन्न, फुल्ली ऑपुलेंट, सबको दिखाने के लिए कि मेरी पत्नी को इतना दुख नहीं होना चाहिए कि मैं सक्षम हूँ लेकिन नहीं करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी पत्नी की इच्छा है तो उन्होंने काशी बसाया। तो काशी में सब लोग भगवान शिव जी के भक्त हैं। तो ये सुदक्षिण भी चल रहा था, पापा मैं भी चलता हूँ युद्ध में, वो कृष्ण को समाप्त करते आएंगे। बोले कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैंने तो ऑलरेडी प्रतिज्ञा ले ली है, मैं सर ले भेज दूंगा, आप आराम से भजन करो अपना। तो शिव जी के भजन में व्यस्त थे वो, तो उसको खबर मिल गई कि पिताजी का सर तो आके गिर गया है काशी में, इतना अपमान, ये युद्ध को सर काट के वहाँ से फेंक दिया, उधर से काशी की सीमा में आके चला दिया। तो तुरंत शिव जी के भजन में बैठ गया वो, और शिव जी को बहुत कड़ी तपस्या की उसने, बोले मेरे पिताजी का वध का बदला लेना मेरा कर्तव्य है एक पुत्र के नाते, बहुत कड़ी तपस्या की। तो शिव जी भी परेशान हो गए, अभी क्या करूँ, भक्त मेरा पुकार रहा है। तो प्रकट हो गए वो, बोले क्या चाहिए आपको, बोले मुझे ऐसा विद्या दो आप, ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे शत्रु का मैं नाश कर सकूँ। तो जानते थे वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, वो कृष्ण को शिव जी के इष्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक डिटेल बता दिया उसको, एक तांत्रिक यज्ञ के बारे में बताया। तांत्रिक मतलब कैसा ना, वो बुरी विद्या होती है वो रात को अमावस्या के दिन वगैरह वगैरह करते हैं उसको, संध्या के समय बीच रात में। तो पूरा एक डिटेल विधि समझा दिया, बोले ये जब विधि करोगे ब्राह्मणों को लेकर तो एक राक्षस प्रकट हो जाएगा उसमें से, और राक्षस बोलेगा क्या आज्ञा है, आप उसको आज्ञा देना जाओ तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब जब वो मेरा राक्षस पैदा होगा तब आप भी उनके साथ साथ देना अपना, जब हम अटैक करेंगे शत्रु पर। तो शिव जी कहेंगे, उन्होंने पहले कहा था कि आप हमारे शत्रु का वध करना, तो शिव जी कैसे बोलेंगे हाँ मैं करूँगा। तो उन्होंने ये ट्रिक किया उनको, ट्रिक, और बताया कि जब ये तुम आक्रमण करोगे ना मेरे पीछे, मेरे गण वो सब तुम्हारे पीछे आएंगे। तो ये फिर यज्ञ तांत्रिक किया, ब्राह्मणों को बिठाकर और तंत्र से उसको पैदा किया। वो भयंकर ऐसा लंबा चौड़ा पहाड़ के समान, लाल दाढ़ी, लाल आँख, लाल बाल उसके, ऐसे काला शरीर, इतनी बड़ी अग्नि, जैसे कि मानो अग्नि ही वो, इतना भयंकर था कि लाखों सूर्यों का तेज और गर्मी उसके अंदर थी। आँच उसके पैदा होने से ही सबको जलन जलन से होने लगी, और वो पैदा हो गया। वो बोला जा द्वारका नगरी में, ध्वंस कर देना द्वारका नगरी को, सब जलाकर खाक कर देना सब लोगों को, वो कृष्ण को भी जलाकर खाक कर देना, जैसी आ गया करके वो गया राक्षस। वो क्या नाम था उसका, भूल गया मैं अभी, राक्षस का भी एक नाम था, तंत्र से निर्माण किया गया। तो वो आ गया द्वारका में, वो आते ही सबको जलाना शुरू कर दिया उसने, समझ, एवरीथिंग इज बर्निंग बर्निंग एंड बर्निंग, सब लोग त्राही माम करके भाग रहे, सब लोग रुक्मिणी के महल की ओर भागे, भगवान हम सब जल रहे हैं, मर रहे हैं, बचा लो। तो भगवान ऐसा देखे, निश्चिंत रहो द्वारका वासियों, मैं इसका समाधान करूंगा। वहां से हिले भी नहीं, तुरंत सुदर्शन को आह्वान किया, सुदर्शन चक्र जाओ सुदक्षिण का इलाज करो, और फिर चेस खेलने बैठ गए। नो इमरजेंसी, हाँ पूरा विश्वास है कि हमारे शस्त्र ही काफी है उसके लिए। तो चक्र उनको भिड़े जाकर भरी जनता के अंदर, तो इनका इतना प्रकाश और अग्नि और इतना तेज, तो चक्र ने क्या किया, चक्र भी हजारों लाखों सूर्य के समान तेजस्वी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा वातावरण निर्माण किया, इसको कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि बर्फ जैसा वातावरण निर्माण किया। तो वो बर्फ जैसे वातावरण ठंडक के अंदर, जैसे -45 समझो, -50, -100 ऐसा उन्होंने वातावरण निर्माण किया। तो वो राक्षस था ना, वो एकदम क्या कहते हैं उसको, यूजलेस हो गया। उसका शस्त्र ही अग्नि था, तो अग्नि को ठंडा कर दिया पूरा उसको, ही वॉज फ्रोजन, एकदम बेकार हो गया वो, तो डर गया वो, तो पीछे 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 हट गया। अभी तंत्र का ऐसा होता है ना कि तंत्र के निर्माण किया हुआ शस्त्र जो है या कोई बुरी प्रक्रिया जो है वो अगर यशस्वी नहीं होती है जिसके लिए वो बनाई गई थी, तो वो जाकर जिसने उसको बनाई है, जिसने भेजी है, उसको ही नष्ट कर देती हो। समझ में आपको आया? अगर वो राक्षस आकर भगवान को मार देता या द्वारका को जला देता, अपने काम में यशस्वी होता तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो अपने काम में यशस्वी नहीं होता है तो जाकर वो उसको मार देगा जिसने उसको बनाया, तो सीधा वापस काशी में लौट के गया वो। पीछे पीछे चक्र कैसे चले गए उसके, चक्र जा रहे पीछे पीछे, ये आगे आगे जा रहा है, काशी में जाता है, सारी ब्राह्मणों को पहले मार देता है जिन्होंने वो मंत्र जपे थे उसके लिए। फिर सुदक्षिण उनका नेता था, सुदक्षिण के लिए ब्राह्मणों ने मंत्र जप किया था, सब तंत्रों का जप किया था, तो जाकर सुदक्षिण को भी मार देता है वो। और ये अपने आप होने के बाद में चक्र जाकर पीछे पूरी काशी नगरी को जलाकर खाक कर देता है। फिर शिवजी महाराज जो है वो भाग के भगवान के शरण में आते हैं, कहते भगवान मैं बहुत आपका अपराधी हूँ, मैंने सब राक्षसों के साथ में संग किया काशी में, मेरी मति भी भ्रष्ट हो गई, मुझे आपका संग चाहिए, मैंने राक्षसों का संग किया तो मैंने ऐसा बुरा काम किया। ये तो लीला है भगवान की, शिवजी कभी प्रभावित नहीं होते हैं, मुझे अभी आपका संग चाहिए, मुझे आपका संग चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा जगन्नाथपुरी धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहाँ पर मेरे पास में आप रहोगे एकाम्र वन में, और एकाम्र वन का मतलब है त्रिभुवनेश्वर, जो भुवनेश्वर है ना, वहाँ पर आप निवास करो, और मैं आपको वरदान देता हूँ कि भुवनेश्वर देखने के पहले मुझे कोई देखेगा जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथपुरी का यात्रा सफल नहीं होगा उसका, सबसे पहले आपको दर्शन करना है, आपका प्रसाद पाना है, फिर मेरे जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश करना है, ऐसा भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जिस तरह से भगवान ने पौंडरक का वध किया, काशीराज का वध किया, सुदक्षिण का भी वध किया और काशी का भी सर्वनाश कर दिया, क्योंकि वो काशी जल गई तो भगवान शिव जी के दब में कहाँ रहूँ, मुझे घर भी चाहिए, तो उन्होंने उनको एक आम्र वन दे दिया। इसके बाद में आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आपके में से जगन्नाथपुरी कितने लोग आए हैं? हरे कृष्णा, हमारी यात्रा में आए थे आप लोग लास्ट ईयर, तो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान हैं वो आपको पता है कहाँ प्रकट हो गए थे? पूरी कथा मैंने वहाँ सुनाई थी आपको, किसी को आइडिया है जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान प्रकट कहाँ हुए थे? द्वारका में हुए थे। इसके संक्षेप में कहानी ऐसी है कि ये जो गोपियाँ थी भगवान, सॉरी रानियाँ थी भगवान की, ये हमेशा रोहिणी माता जी को पूछती थी कि आप ही थे हम में से, सब लोग में से गले आप ही वृंदावन में थे, नंदगांव वृंदावन में, बाकी देवकी वसुदेव तो यहीं थे, हम भी तो शादी होने के बाद में आई हुई हैं, हमको तो बचपन का पता नहीं कुछ, लेकिन हमने बहुत सुना है कि वहाँ पर इतनी सुंदर लीला करते थे, हाँ तो हमको सुनना है वो, और आप सुनाइए हमको, आपने तो आँखों देखा हाल है आपके लिए। तो रोहिणी कहती थी देखो मैम सुनाऊँगी आपको सब, लेकिन एक गड़बड़ है उसके अंदर, जैसे मैं सुनाऊंगी ना ब्रज की लीला, तो जहाँ पर भी ब्रज की लीला सुनाई जाती है वहाँ पर तुरंत कृष्ण बलराम प्रकट हो जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर कथा कही जा रही है, और जैसे ही ब्रज की उनको याद दिलाई जाएगी, ब्रज की कुछ घटनाओं का याद दिलाया जाएगा कथा के माध्यम से, तो तुरंत दारूक सारथी को बुलाएंगे और कहेंगे चलो ब्रज में जाएंगे, और एक बार वो ब्रज में गए तो फिर वो लौट के आने की गारंटी नहीं है। तो रानी हूँ आप क्या चाहती हो? तो नहीं 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 वो हमको हमको पति को खोना नहीं है। तो फिर बहुत बार चर्चा हुई ऐसे, बहुत बार मना किया गया, तो एक बार उन्होंने कहा ऐसा करते हैं हम लोग कृष्ण बलराम आएंगे, ये समस्या है ना, हम कृष्ण बलराम आने के पहले से ही किसी को ऐसा रखेंगे रखवालदार को, वो दूर से देखेगा को आ रहे हैं तो हम कथा बंद कर देंगे, और पहरेदार को सुभद्रा जी को रखेंगे और सुभद्रा जी तुरंत पहनेगी, और क्षितिज के अंदर दूर तक भी दिखाई देंगे ना वो आ रहे हैं, तो वो तुरंत बोलेंगी हे बंद करो बंद करो आ रहे हैं, हम बंद कर देंगे चले जाएंगे सब, ये ठीक है। तो एक दिन उन्होंने अच्छे एक महल में सारे दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा भी बंद कर दिया लास्ट वाला, उसके बाहर सुभद्रा को खड़ा कर दिया और रोहिणी को ऐसे आसन पर बिठा दिया, और देवकी वसुदेव सब लोग, वसुदेव नहीं देवकी, सारी रानियाँ भगवान की, सब लोग बैठ गए कथा सुनने के लिए, निश्चिंत होकर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी भगवान के आने का संकेत मिलेगा कथा बंद करनी है। तो सुभद्रा को भी बड़ा उत्सुकता थी कि क्या क्या बता रहे हैं अंदर, हमको सुनना है। तो वो दरवाजे पे कान लगा के खड़ी है और अंदर शुरू हो गया, भगवान का जन्म की लीला हो गई, सब बचपन की लीला सब शुरू हो गई एक एक करके। सुभद्रा सुनते ही सुभद्रा बेहोश हो गई, बड़ी बड़ी मुस्कान उसके चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें, आनंद के भावों में विभोर होकर वो बेहोश हो गई। तो जो पहरेदार था भरोसे वाला वही बेहोश हो गया। वो कथा तो चल रही है क्योंकि नॉक तो नहीं हो रहा ना, कोई बजा तो नहीं रहा है कोई, तो कथा एकदम जोर से चल रही है और भाव से बढ़ रही है। रानियां भी आनंद विभोर हो गई है और श्योर इनफ कृष्ण बलराम प्रकट हो जाते हैं। वो देख रहे, अरे मेरी बहन ऐसे कैसे पड़ी, क्या हो गया उसको, दरवाजा बंद है, सब दरवाजे बंद है, ये बाहर बेहोश पड़ी है अति आनंद में ऐसे विभोर होकर। तो वो भी दरवाजे पे कान लगाते हैं, अंदर क्या चल रहा है। तो वो अपनी कथा सुनते हैं, खुद की कथा सुनते हैं, सारी कथा सुनते हैं खुद की। उनके शरीर में परिवर्तन होने शुरू कर देते, जैसे हाथ बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, आँख बड़े बड़ी हो रही है, बड़ी मुस्कान कान तक पहुँच रही है, शरीर में कंप हो रहा है, आँखों से अश्रु आ रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, भगवान कांप रहे हैं, शरीर का स्वरूप बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, कभी इतना बदल गया कि 6-6 इंच की जगह एक एक जोड़ में, ये हाथ वहाँ तक ऐसे बन गए, कभी एकदम बंडल बन गए पूरे गोल। आखिर में महाभाव का अनुभव करते हो, महाभाव तो अभी वो बड़ा चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। महाभाव एक विलक्षण भाव है, वो केवल राधा रानी कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के पास है और किसी के पास नहीं है। तो महाभाव का अनुभव करने लगते हैं, जब महाभाव का अनुभव करते हैं तो उनके पैर अंदर घुस जाते हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं, पंजा वंजा नष्ट हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी होती है, बड़ी मुस्कान होती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं सुभद्रा जी के दोनों साइड में। वो अंदर कथा जोरों से चल रही है, अंदर को पता ही नहीं, तो अंदर जोरदार कथा चल रही है और बाहर ये जैसे आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं ना, उस भाव में उस रूप में गिर गए। तो नारद मुनि आकाश मार्ग से आ रहे थे तो देखा, करे तो अद्भुत भाव अद्भुत रूप में भगवान का दर्शन किया उन्होंने। तो नीचे आए दर्शन करने के लिए, देखा तो बाप रे, उनके मन में ऐसा प्रेम का अनुभव हो गया, ऐसा प्रेम का अनुभव हो गया, इतने बड़े प्रेमी भक्त होने पर भी उनको एक विचित्र अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो बड़े गदगद हो गए वो आनंद से, खूब आनंद का प्रेम का अनुभव किया कि ये प्रेम आनंद मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत देर आनंद का अनुभव लेने के बाद में भगवान को स्पर्श किया, भगवान का स्पर्श किया तो भगवान दोबारा अपने पूर्ववत हो गए, वो जैसे पहले जैसे हो गए, सब शरीर से पैर बाहर आ गए, वो खड़े हो गए। तो नारद मुनि ने कहा, ये भगवान ये क्या रूप है आपका, इसको देखकर मेरे मन में इतनी अद्भुत प्रेम की अनुभूति हुई, मेरी आपकी विनती है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति के मन में आपके लिए विलक्षण प्रेम केवल आपको देखने मात्र से इस रूप में अनुभव हुआ तो आपका ऐसा ही रूप ये भौतिक दुनिया में प्रकट होना चाहिए, ताकि आपके इस अद्भुत रूप को देखने मात्र से ही उनके मन में आपके लिए प्रेम और भक्ति की जागृति होगी और सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था तथास्तु, इसलिए भगवान जगन्नाथपुरी में प्रकट हो गए। लेकिन वो प्रकट हुए थे द्वारका नगरी में, ये इस भगवान की लीला है। अभी एक सुंदर कथा आती है, भगवान जब ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में वो उनके जो लड़के थे ना, सब लोग तो बड़े थे वैसे, लेकिन पुत्र ही थे उनके, पुत्र थे, ग्रैंडसन भी थे, सब लोग एक बार जंगल में ऐसे बैठे हुए थे आराम से, तो गेंद खेल रहे थे, गेंद जब खेल रहे थे तो गेंद किसी ने उड़ाई तो गेंद जाके कुएं में गिरी, सब लोग कुओं की ओर भागे क्योंकि अभी गेंद निकालना है। लेकिन वो कुआं इतना गहरा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इतना गहरा इतना गहरा इतना गहरा कि वो उनको गेंद तो दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन अंधकार अंधकार ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उस अंधकार में गहरी और सूखी कुएं में उनको एक वो नजर आई, क्या, चिपकली, वो जैसे हमारी दीवार में होती उतनी छोटी नहीं थी, वो बहुत विशाल ऐसे मगरमच्छ की तरह थी लेकिन है चिपकली, और वो एकदम कुएं के एकदम गहरे कुएं के जमीन जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर है वो, देख रहे उनको ऊपर से देख रहे, बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे इतने बड़े कुएं में एक छिपकली कहाँ से आ गई। तो भगवान के पास गए, उनको बोला कि हमने ऐसा ऐसा देखा, हमारी गेंद गिर गई थी, जरा आप आइए। तो भगवान आ गए उधर, सब अपने बालकों को सबको लेकर उधर आ गए। इतनी देर से कोशिश कर रहे थे सब लोग, भगवान ने क्या किया, देखा वो छिपकली को, देखा एक तिनका लिया, तिनका, और तिनका को हाथ में लिया, तिनका ऐसा लंबा हो गया, छिपकली तक पहुंच गया, छिपकली को चिपक गया, और भगवान ने ऐसा उसको उठाया तिनके से और छिपकली को बाहर कर दिया कुएं के। जैसे ही भगवान ने उनको बाहर निकाला तो वो छिपकली की जगह पर एक राजा उत्पन्न हो गया, छिपकली नष्ट हो गई, अदृश्य हो गई और राजा प्रकट हो गया। तो भगवान ने कहा कौन हो तुम, भगवान तो सब जानते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं राजा नृग हूँ, नृग, नृग राजा हूँ। तो इस अवसर में कैसे आ गए आप, तो उन्होंने कहा कि मैं नृग राजा बहुत दानी था और मेरे राज्य में मैं दिन भर दान करता था और खास करके गाय का दान करता था, हजारों लाखों करोड़ों गाय मैं रोज दान करता था, और वो भी गाय कैसे किसी के पास से चुराई हुई जबरदस्ती ली गई ऐसे नहीं, मेरा ऐसा एक सिस्टम था कि मैं अपनी गायों को ब्रीड करना, नंबर बढ़ाना, अपना खुद का मैं मेरा प्रोजेक्ट था। मेरे पास लाखों अरबों गायें थी, मेरी गौशाला इतनी विशाल थी कि विशेष रूप से हर रोज मैं लाखों करोड़ों गाय दे सकूं, इतनी मेरे पास उत्पादन की व्यवस्था थी गाय की। अब ये कैसा कर सकते हैं उनको वही जानते हैं, लेकिन दिन भर मैं ब्राह्मणों को गाय दान करता था, वो भी सालंकृत यानी अलंकृत अलंकार के वस्त्रों के साथ में। तो सब संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते थे, बड़ा आनंदित था मैं। एक दिन मैंने किस ब्राह्मण को कई गाय दान कर दी, बेचारा खुश होकर ले गया वो, और वो उसमें से एक गाय लौट कर मेरे गोठे में आ गई वापस गौशाला में। गाय होती ना वो आप जानते हैं ना, रात में कहीं भटकेगी फिर भी अपने मालिक के गौशाला में पहुंच जाती। तो ये जिसको दी गई है उसकी गौशाला छोड़कर अपने आप चलकर मेरे गौशाला में आ गई, और इतनी हजारों संख्या में कोई पहचान नहीं पाया कि ये मेरी हो उसकी कोई। अगले दिन में जब बैठे दान देने के लिए तो वो गाय भी दूसरे ब्राह्मण को दान की गई, तो जिसको दी गई थी कल वो आ गया उधर, वो बोला ये गाय मेरी है। तो लोगों ने ये गाय मेरी है, नहीं कल मुझे दी गई थी, नहीं आज मुझे दी गई थी। तो राजा समझ गए कि अरे गड़बड़ हो गया, ये तो वहाँ से लौट के आई और मैंने दोबारा दान कर दी उसको, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रॉपर्टी मैंने इनको दान कर दी तो आपका अपराध हो गया ना उसमें। तो राजा समझ गए कि गड़बड़ हो गया है। तो राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, बोले कि आपको इस एक गाय के बदले में मैं 10,000 गाय आपको दोनों को दूंगा अलग अलग, लेकिन इस गाय का विवाद छोड़ दो आप। लेकिन दोनों ब्राह्मण भी ऐसे, वो बोलते कि हमको यही गाय चाहिए। बोले महाराज जी मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन अपने आप हो गया है, अभी गड़बड़ तो हो गया है, लेकिन आप अभी विद्वान हो, ब्राह्मण हो, आप मेरी बात मान लो, इस गाय को छोड़ दो आप, दोनों ही मत लो, 10,000 ऐसी गाय मैं आपको देता हूँ इसके बदले में। लेकिन दोनों अड़ गए और दोनों एक यही गाय छोड़ के आपकी सारी गायें वहाँ पर ही छोड़ के चले गए। इस अपराध के वजह से वो छिपकली बन गए। मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ कि मेरा ऐसा मुझे छिपकली बंद कर रहना पड़ा। इसका मतलब क्या होता है, दान धर्म करके, केवल दान धर्म करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल तपस्या करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल धाम की यात्रा करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल नदी में स्नान करके भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे ऊपर क्या है, भगवान की भक्ति, हरि नाम, भगवान के नाम पर श्रद्धा। हम लोग सोचते हैं कि हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो फिर दुख दूर हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, ये मिलेगा, फिर वो मिलेगा, क्या मिलेगा, इतना यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये सारे मार्ग जो है अपने आप में अपूर्ण है, भक्ति के लिए अनुकूल है। भक्ति में अगर आप भक्ति करते हुए दान पुण्य करते हो, यज्ञ करते हो, जैसे हमने भी किया यहाँ पर, तो सारा सफल है, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण नहीं है वो, भक्ति के सन्निध्य में परिपूर्ण है। भक्ति करते हुए हमको तीर्थयात्रा भी करनी चाहिए, दान भी करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। बिना भक्ति के करेंगे तो वो कर्मकांड हो जाएगा, और कर्मकांड में हमेशा गलती होती है, हमेशा। राजा ने कोई चाहा भी नहीं था कि ऐसा मैं करूँगा, लेकिन ऐसे भौतिक दुनिया में होता है हमेशा। आप सोचते कुछ हो और हो कुछ आता है और अपराध हो जाता है। एक शादी का विवाह प्रसंग देखो आप, एक शादी के प्रसंग में कितने अपराध होते हैं, कोई चाहता नहीं है वधू वाले और वर वाले, लेकिन इस शादी की प्रक्रिया में बहुत लोगों का अनायास ही दिल दुख जाता है ना चाहते हुए भी। कईयों की शादी मारा मारी होती, सर फूटते हैं। देखो आप हमारे पालघर में जाइए, विरार में जाइए, कोंकण में जाइए, शादी में मारा मारी होकर दो चार हाथ पांव टूट नहीं है उसके अंदर, अपराध होते हैं ना। उसी प्रकार से इतना बड़ा दानी होने पर भी उसका अंजाम क्या हुआ, उसको छिपकल बन कर रहना पड़ा। तो भगवान ने फिर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया तो वो तुरंत रथ आया आकाश से और वो अपने स्थान पर चला गया। तो भगवान ने ना एक बहुत सुंदर उपदेश किए हैं, उसको मैं सुनाना जरूरी है। वो जाने के बाद भगवान अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। वो कहते हैं इतना राजा महान था, ब्राह्मणों को दान दे देकर कितना पुण्य इकट्ठा किया था उसने, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का अपराध हो गया उसके हाथ से। तो वो इतने बड़े राजा की कथा है, तो हमारी क्या कथा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि हम तो आप साधारण जीव हैं, ऐसे भगवान मानव के रूप में बोल रहे हैं। इसलिए तपस्या और योग के करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जिस तरह से विष प्राप्त करके विष खाने वाला व्यक्ति मर जाता है, और जिस प्रकार से पानी डालने से अग्नि बुझ जाता है, लेकिन ब्राह्मण का संपत्ति छीनने से अनेक पुश्तों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमारा परिवार और हमारा परिवार के जन कष्ट पाते हैं। आगे बोलते हैं क्षत्रिय जो है वो अपने ऐश्वर्य से बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि ये राजा तो दात्री नृग राजा, इसको अपने दानी गुण पर बहुत गर्व था, बहुत बड़ा दानी हूँ, तो उधर वो उसका गर्व नष्ट हो गया। कभी भी वो कहते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति को भोगने का प्रयास मत करना, ब्राह्मण को कभी भी चीट करने का प्रयास मत करना। अगर हम ब्राह्मण के अपराध करते हैं और ब्राह्मण के प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं या गलती से जाने अनजाने में उनका नुकसान होता है, तो कहते हैं कि 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि बनकर रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम वर्म इन द स्टूल फॉर 60,000 ईयर्स अगर आप ब्राह्मण की संपत्ति को मिसअप्रोप्रिएट करते हो। ब्राह्मण के द्वार पास में जो धन है अगर आप लेने की इच्छा भी करते हो तो आपकी आयु कम हो जाएगी, और अगर आप ले भी लेते हो ब्राह्मण का धन छीन लेते हो तो आपको दोबारा सांप बनकर जन्म लेना पड़ेगा, स्वयं भगवान बता रहे हैं। इसलिए मेरे पुत्रों, प्रिय पुत्रों, कभी भी ब्राह्मण से कठोर वचन करके बात मत करना, कभी भी ब्राह्मण को अपराध मत करना शरीर से या मन से, जस्ट ब्राह्मण के साथ में सामने स्मित मुख से जाना, उनको आदर अर्पण करना, जैसे मैं हमेशा ब्राह्मणों को आदर करता हूँ आपने देखा है, उसी तरह से आपको भी ब्राह्मण का आदर करना होगा, क्योंकि मैं स्वयं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं और उसको दंड दूंगा जिसने ब्राह्मण का अपराध किया है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से सबके सामने राजा नृग का उद्धार हो गया और भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया।